एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी अमरीकी किताब की दुनिया में जा रहे हैं जो दिल पर असर तो करती है लेकिन एक अजीब सी बेचैनी भी छोड़ जाती है।
कार्सन मैक्युलर्स का उपन्यास द हार्ट इज अ लोनली हंटर।
बिल्कुल, और कमाल की बात यह है कि उन्होंने ये महज 23 साल की उम्र में लिखा था, मतलब पहली किताब से उन्हें इतनी पहचान मिली।
सही बात है, वो अमरीकी सदर्न गॉथिक साहित्य की एक बहुत अहम आवाज मानी जाती हैं।
सदर्न गॉथिक यानी वो कहानियां जिनमें दक्षिण का वो खास माहौल होता है, थोड़े अजीब से किरदार, बिगड़ते समाज की झलक।
हाँ, और कई बार थोड़े डरावने या रहस्यमय पहलू भी। मैक्युलर्स का जन्म जॉर्जिया में हुआ था 1917 में, तो वो माहौल उनकी रग रग में था
और उनकी लेखनी में वो दिखता भी है, खासकर हाशिए पर जो लोग हैं, उनका दर्द, उनका अकेलापन और किसी से जुड़ने की वो जो गहरी एक तड़प होती है ना।
वो तड़प, वही तो इस उपन्यास की जान है। ये अकेलापन, ये जुड़ाव की तलाश हर पन्ने पर महसूस होती है।
ये उनकी पहली प्रकाशित किताब थी, 1940 में आई थी। इसका पहला नाम शायद द म्यूट था।
हाँ बिल्कुल, द म्यूट। हालांकि कहानी अमेरिका के दक्षिण में है, पर ये किसी एक जगह की कहानी नहीं लगती। ये तो इंसान की रूह के अकेलेपन की कहानी है, कहीं भी हो सकती है।
सही कहा, और इसीलिए शायद इसे छपते ही इतनी तारीफ मिली थी। इसकी जो मनोवैज्ञानिक गहराई है और भाषा, बड़ी काव्यात्मक भाषा है।
बिल्कुल, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास के मर्म तक पहुंचें, मतलब इसकी कहानी को परत दर परत खोलें।
हाँ, किरदारों के अंदर क्या चल रहा है, उनके भावनात्मक उतार चढ़ाव, उनको समझें।
और जो मुख्य विषय हैं जैसे अकेलापन या फिर संवाद की मुश्किलें, उम्मीद, ये सब कैसे कहानी में बुना हुआ है।
और वो बड़ा सवाल जो किताब का नाम ही उठाता है, क्या दिल वाकई एक अकेला शिकारी है? क्या हम सच में कभी एक दूसरे को समझ पाते हैं?
चलिए पहले उस दुनिया को देखते हैं जहां ये सब हो रहा है। ये 1930 के दशक का आखिरी दौर है, जॉर्जिया का एक छोटा सा मिल टाउन।
माहौल कैसा है वहां का?
माहौल थोड़ा बोझिल है, ग्रेट डिप्रेशन का असर है, गरीबी है, गर्मी की घुटन है, और सतह के नीचे वो नस्लीय तनाव और पैसों की तंगी, सब उबल रहा है, एक बेचैनी सी है हवा में।
और इसी बेचैन माहौल में कहानी का केंद्र है जॉन सिंगर, एक ऐसा व्यक्ति जो सुन और बोल नहीं सकता।
हाँ बदिर, और कहानी में असल मोड़ तब आता है जब सिंगर का एक ही दोस्त है स्पिरोस एंटोनोपोलस, वो भी बदिर है।
अच्छा।
वो कुछ अजीब हरकतें करने लगता है और उसे फिर एक मानसिक अस्पताल भेज दिया जाता है।
ओहो, तो सिंगर बिल्कुल अकेला रह जाता है।
बिल्कुल, और यहीं से मतलब कहानी का वो अजीब सा पैटर्न शुरू होता है। शहर के 5 अलग अलग लोग हैं।
कौन कौन हैं ये लोग?
संगीत का जुनून है, एक डॉक्टर कोपलैंड है, पढ़े लिखे अश्वेत डॉक्टर, बड़े आदर्शवादी, एक जैक ब्लाउंट है, बागी किस्म का मजदूर नेता, और एक कैफे मालिक है बिफ ब्रैनन।
अच्छा, ये 5 लोग।
हाँ, और ये सब धीरे धीरे सिंगर की तरफ खिंचने लगते हैं। उसकी खामोशी में उन्हें कुछ खास नजर आता है, जैसे जैसे कोई चुंबक हो।
और यही वो उपन्यास का जो मुख्य संघर्ष है वो सामने आता है ना?
बिल्कुल, एक तरफ तो इन सब लोगों की अपनी जरूरतें हैं, कोई समझे, कोई सुने, और दूसरी तरफ वो बुनियादी अकेलापन है जो शायद हर इंसान के हिस्से में आता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग सिंगर को सच में समझ रहे हैं
या सिर्फ अपनी जरूरतें, अपने डर, अपनी उम्मीदें उस पर डाल रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, और इस सब के बीच बेचारा सिंगर, वो खुद तो अपने दोस्त एंटोनोपोलस के जाने के गम में डूबा है, उसका अपना दर्द तो कोई देख ही नहीं रहा।
सही कहा, चलिए इन किरदारों को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। जॉन सिंगर से शुरू करते हैं।
जॉन सिंगर वो उपन्यास का जैसे शांत केंद्र है, एक घड़ीसाज है या शायद चांदी पर नक्काशी करता है।
वो कोई हीरो या विलेन टाइप का नहीं है।
नहीं बिल्कुल नहीं, वो तो एक आईने की तरह है, खाली आईना जिसमें बाकी सब अपना अक्स देखते हैं।
एंटोनोपोलस के लिए उसका लगाव बहुत गहरा है, उसके जाने के बाद वो जैसे टूट सा जाता है।
हाँ, और वो लगातार अस्पताल जाता है उससे मिलने, उससे बातें करने, उसके लिए पैसे बचाता है।
बिल्कुल, यही सिंगर की भूमिका दिलचस्प हो जाती है।
वो अनजाने में एक कैनवस बन जाता है
जिस पर दूसरे अपनी कहानियां रंगते हैं।
हाँ, लोग उसे बहुत बुद्धिमान, बहुत हमदर्द मान लेते हैं, शायद इसलिए कि वो चुप रहता है, कोई बहस नहीं करता, कोई राय नहीं देता।
लेकिन असलियत यह है कि वो खुद अपने अकेलेपन में है, एंटोनोपोलस की यादों में खोया हुआ। ये एक दुखद विडंबना है।
बिल्कुल। फिर है मिक केली, 14 साल की लड़की, थोड़ी टॉमबॉय जैसी, गरीब परिवार से है
और उसे संगीत का बहुत शौक है ना, वो अंदर का कमरा।
हाँ, उसका वो अंदर का कमरा, उसके अंदर जैसे संगीत का एक तूफान है। उसकी अपनी एक दुनिया है, धुनों की, सपनों की।
लेकिन असल दुनिया तो बहुत अलग है।
वही तो, हकीकत यह है कि ना उसके पास कोई बाजा है, ना सीखने का कोई जरिया। वो समाज में फिट नहीं हो पाती, अपनी जगह ढूंढ रही है पर मिल नहीं रही।
मलिक का किरदार कई चीजें दिखाता है। कला के लिए वो तड़प, बचपन कैसे खो जाता है, गरीबी कैसे सपनों को कुचल देती है।
हाँ, उसका वो अंदर का कमरा जैसे असल दुनिया की कठोरता से बचने की जगह है, लेकिन आखिरकार दुनिया का शोर वहां पहुंच ही जाता है। उसका सफर उम्मीद से शुरू होकर एक तरह के समझौते पे खत्म होता है।
फिर आते हैं डॉक्टर बेनेडिक्ट मैडी कोपलैंड।
हाँ, डॉक्टर कोपलैंड एक पढ़े लिखे अफ्रीकी अमेरिकन डॉक्टर। वो अपने समय के नस्लीय अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं।
अपने लोगों को जगाना चाहते हैं।
बिल्कुल, उन्हें ऊपर उठाना चाहते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि उनके अपने ही बच्चे, वो उनके आदर्शों से सहमत नहीं है, उनसे दूर हो गए।
और वो खुद भी बीमार हैं, टीबी से।
हाँ, टीबी से जूझ रहे हैं। उनका किरदार नस्लीय अन्याय की भयानक तस्वीर तो दिखाता ही है, साथ में ये भी कि ज्ञान का बोझ कितना भारी हो सकता है। और कभी कभी आप अपने सबसे करीबी लोगों से भी संवाद नहीं कर पाते।
उनमें एक तरह का बौद्धिक अहंकार भी नजर आता है, जो शायद उन्हें और अकेला कर देता है।
हाँ, कह सकते हैं उनके जो मार्क्सवादी विचार हैं और जमीन की जो हकीकत है, उसमें एक फासला है। वो भी सिंगर के पास जाते हैं अपनी निराशा, अपना गुस्सा निकालने, ये मानकर कि सिंगर उन्हें समझता है।
अगला किरदार जेक ब्लॉन्ट।
जेक ब्लॉन्ट वो एक शराबी है, जोशीला है पर बहुत अस्थिर है। एक मजदूर नेता जिसके दिल में क्रांति की आग है।
वो हमेशा गुस्से में रहता है सामाजिक नाइंसाफी को लेकर।
हाँ, हर वक्त भड़का रहता है। मिल मजदूरों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, भाषण देता है पर कोई सुनता नहीं। उसका गुस्सा अक्सर काबू से बाहर हो जाता है।
ब्लाउंड के जरिए शायद मक्यूलर्स ये दिखा रही हैं कि सिर्फ आदर्शवाद काफी नहीं है अगर इंसानी जुड़ाव ना हो तो।
बिल्कुल, वो भी अपनी भड़ास निकालने के लिए सिंगर के पास ही जाता है। उसे लगता है सिंगर उसके क्रांतिकारी विचारों से सहमत है। उसका अकेलापन उसके गुस्से में साफ झलकता है।
और आखिरी किरदार बिफ ब्रेनन, कैफे का मालिक।
हाँ, बिफ ब्रेनन, उसका एक कैफे है, न्यूयॉर्क कैफे, जो रात भर खुला रहता है। उसकी पत्नी की अभी अभी मौत हुई है,
तो वो जिंदगी को बस देख रहा है एक दर्शक की तरह।
हाँ, काफी हद तक। पत्नी की मौत के बाद उसमें एक अजीब सी नरमी आ जाती है, एक देखभाल करने वाली भावना। वो समाज के जो हाशिए पर लोग हैं, जिन्हें वो फ्रीक्स कहता है, उनमें खास दिलचस्पी लेता है। वो चुपचाप सबको देखता रहता है, शायद समझने की कोशिश करता है।
बिफ का किरदार एक तरह से साक्षी का है। वो लैंगिक भूमिकाओं पर, खामोश हमदर्दी पर सोचने को मजबूर करता है।
सही, तो ये सारे किरदार अपनी अपनी तन्हाई, अपनी अपनी जरूरतें लेकर सिंगर की तरफ खींचते हैं।
और सबसे खास बात यह है कि वो सब सिंगर पर बात करते हैं, सिंगर से नहीं।
हाँ बिल्कुल, हर कोई उसे अपनी कहानी सुना रहा है, उसे अपनी कहानी का हिस्सा बना रहा है, बिना ये सोचे कि सिंगर की अपनी कहानी क्या है।
अब कहानी आगे कैसे बढ़ती है? सिंगर जब केली परिवार के घर रहने लगता है।
हाँ, एंटोनोपोलोस के जाने के बाद वो केलीज के यहाँ बॉर्डर बन जाता है, और धीरे धीरे मिक, डॉक्टर कोपलैंड, जेक ब्लाउंड सब उसकी खामोशी में कुछ खास देखने लगते हैं।
एक तरह का आकर्षण।
हाँ, वो सब बारी बारी से उसके पास आते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, अपने सपने सुनाते हैं।
और सिंगर जो खुद अपने दोस्त को याद कर रहा है, वो अनजाने में ही उन सब का, क्या कहते हैं, विश्वास पात्र बन जाता है, एक तरह का कन्फेसर।
हाँ बिल्कुल, पाप स्वीकारक। यहीं से वो दुखद सिलसिला शुरू होता है जहां लोग उसकी खामोशी को ही समझदारी मान लेते हैं।
कहानी आगे बढ़ती है तो इन किरदारों के संघर्ष और मुश्किल होते जाते होंगे।
हाँ बिल्कुल, मिक संगीत के लिए छटपटाती है, रेडियो सुनती है, टूटा फूटा वायलिन बनाने की कोशिश करती है, पर घर की गरीबी उसे जकड़े हुए है।
और ब्लाउंट, उसका क्या होता है?
ब्लाउंट मजदूरों को एकजुट करने में नाकाम रहता है। उसकी हताशा बढ़ती जाती है, एक मेले में उसकी मारपीट भी हो जाती है।
डॉक्टर कोपलैंड की दुनिया भी बिखरने लगती है।
हाँ बुरी तरह से। उनकी एक क्रिसमस पार्टी होती है जो पूरी तरह असफल रहती है। फिर उनका बेटा विली।
हाँ, विली का क्या होता है?
उसे एक झूठे इल्जाम में जेल हो जाती है, और वहां उसके साथ इतनी बुरी तरह मारपीट होती है कि उसके पैर काटने पड़ते हैं।
हे भगवान, ये तो भयानक है।
हाँ, ये घटना डॉक्टर कोपलैंड को अंदर तक तोड़ देती है। ये उस वक्त के नस्ली अन्याय का एक बहुत ही क्रूर चेहरा है।
और इस सब के बीच सिंगर क्या कर रहा है? वो सबकी सुन रहा है।
हाँ, वो सबकी सुनता रहता है, एंटोनोपोलोस के लिए पैसे बचाता है, उसे खत लिखता है, लेकिन खतों में शहर की बस ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, शायद वो खुद भी उन गहरी उलझी हुई भावनाओं को समझ नहीं पाता जो लोग उस पर डाल रहे हैं।
फिर वो अस्पताल जाता है एंटोनोपोलस से मिलने।
हाँ, और वो मुलाकात वो सिंगर के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होती है, तबाही लाती है एक तरह से।
क्या देखता है वो वहाँ?
वो देखता है कि एंटोनोपोलस बहुत मोटा हो गया है, बीमार है और बिल्कुल उदासीन है। ऐसा लगता है जैसे वो सिंगर को पहचान भी नहीं रहा।
ओहो, तो सिंगर का जो एक सहारा था वो भी टूट गया।
हाँ बिल्कुल, वो जिस उम्मीद के धागे को पकड़कर जी रहा था वो धागा ही टूट जाता है। यहाँ असलियत और सिंगर के मन की दुनिया का फर्क एकदम साफ हो जाता है। उसकी अपनी उम्मीद भी दम तोड़ देती है।
कहानी अब अंत की तरफ जा रही है।
हाँ, डॉक्टर कोपलैंड हार मान लेते हैं। नाइंसाफी के खिलाफ उनका आखिरी विरोध भी बेकार जाता है। उनकी पिटाई होती है और वो गांव लौट जाते हैं।
और मिक?
मिक को अपना सपना छोड़ना पड़ता है। स्कूल छोड़कर एक दुकान में नौकरी करनी पड़ती है। उसका वो अंदर का कमरा अब जैसे बंद हो गया है।
और ब्लाउंट?
ब्लाउंट शहर की हिंसा और लोगों की बेरुखी से तंग आकर शहर छोड़ देता है।
और फिर
सिंगर को एंटोनोपोलस की मौत की खबर मिलती है। हाँ, और ये खबर उसके लिए आखिरी झटका होती है। अपने दोस्त को खोने का दुख और दूसरों की उम्मीदों का वो जो भारी बोझ था वो उसे सह नहीं पाता।
और जॉन सिंगर आत्महत्या कर लेता है।
हाँ,
उसकी मौत का असर क्या होता है शहर पर, उन लोगों पर जो उस पर इतना निर्भर थे?
शहर में जैसे एक खामोश सदमा फैल जाता है। वो लोग जिन्होंने उसे अपना सहारा, अपना गुरु, यहाँ तक कि अपना भगवान मान लिया था, वो अचानक खुद को फिर से अकेला पाते हैं। उनका बनाया हुआ वो ईश्वर चला गया था।
उन्हें अपनी गलतफहमियों का, अपने अकेलेपन का सामना करना पड़ता है।
हाँ, उपन्यास के आखिर में हम देखते हैं कि सब अपनी अपनी राह पर हैं, लेकिन उनका अकेलापन शायद पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है।
मिक अपनी नई जिंदगी को जैसे स्वीकार कर लेती है। डॉक्टर कोपलैंड खामोशी में खो जाते हैं। ब्लाउंट कहीं और चला जाता है।
और बिफ ब्रेनन, वो अपने कैफे में खड़ा है, सुबह हो रही है और वो इंसानी जिंदगी के दुख, प्यार, अकेलेपन, इन सब के बारे में सोच रहा है। वो आखिर तक एक दर्शक ही बना रहता है।
द तो जाहिर है अकेलापन।
हाँ, हर किरदार, हर मुख्य किरदार अपनी ही दुनिया में जैसे कैद है। और विडंबना देखिए, जो शहर में सबसे ज्यादा लोगों से घिरा है सिंगर, वही सबसे अकेला है।
हाँ, ये अकेलापन सिर्फ शारीरिक दूरी वाला नहीं है, ये रूहानी है, अंदर का अकेलापन।
और ये इस बात से और गहरा होता है कि लोग सिंगर से बात नहीं करते, सिंगर पर बात करते हैं। उसे सुनते नहीं, उसे सुनाते हैं।
ये संवाद की पूरी नाकामी है। मतलब लोग बोलते तो हैं, पर क्या सच में कोई किसी को समझ पाता है?
हाँ, और एक बधिर इंसान का शहर का सबसे बड़ा राजदार बन जाना, ये अपने आप में एक बहुत तीखा व्यंग्य है।
शायद लोग अक्सर बात करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बात सुनाने के लिए एक खामोश दीवार ढूंढते हैं।
बिल्कुल, सिंगर वही दीवार बन जाता है।
और जब कोई सुनने वाला ना हो या कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो, तो इंसान किसी ना किसी चीज पर तो भरोसा करेगा ही।
हाँ, ये लोग सिंगर को लगभग एक संत या देवता का दर्जा दे देते हैं। वो उसमें वो सब देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। उसकी मौत उनके इस गड़े हुए विश्वास की भी मौत है।
इसके साथ ही उपन्यास उस दौर के सामाजिक अन्याय पर भी खुलकर बात करता है।
हाँ, डॉक्टर कोपलैंड की कहानी खास तौर पर नस्लवाद, अलगाव, वो क्रूर सच्चाई सामने आती है। और जैक ब्लाउंट के जरिए वो वर्ग भेद और पूंजीवाद का जो अमानवीय असर है,
उस पर भी चोट की गई है।
और 1930 के दशक का वो अमेरिकी दक्षिण का माहौल इन समस्याओं को और उभार देता है।
बिल्कुल।
एक और अहम पहलू है सपनों का टूटना,
खासकर मिकमेली के जरिए, है ना? उसका वो संगीत के अंदर का कमरा।
हाँ,
वो उसकी मासूमियत, उसकी उम्मीद का प्रतीक है।
हाँ, लेकिन समाज और गरीबी, उनके पास उसके सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। इसी तरह डॉक्टर कोपलैंड और ब्लाउंट के आदर्शवादी सपने भी हकीकत से टकराकर टूट जाते हैं।
और प्यार, उपन्यास प्यार को कैसे देखता है?
प्यार को भी बड़ा उलझा हुआ दिखाता है। अक्सर हम जिसे प्यार समझते हैं वो सिर्फ हमारी अपनी जरूरतें होती हैं, हमारा अपना अक्स होता है जिसे हम दूसरे पर थोप देते हैं।
सिंगर का एंटोनोपोलस के लिए प्यार भी शायद कुछ वैसा ही है।
हाँ, उसमें भी एक तरह का प्रोजेक्शन है। यही वो शीर्षक याद आता है, द हार्ट इज अ लोनली हंटर, दिल एक अकेला शिकारी है। शायद ऐसे जुड़ाव की तलाश में भटकता रहता है जो कभी पूरी तरह मिलता ही नहीं।
मैकुलर्स की लिखने की शैली भी कमाल की है। वो थर्ड पर्सन में कहानी कहती हैं, लेकिन बड़ी खूबी से हमें अलग अलग किरदारों के मन की दुनिया में ले जाती हैं।
हाँ, हम मेक की उम्मीदें महसूस करते हैं, डॉक्टर कोपलैंड का गुस्सा, ब्लाउन की बेचैनी और सिंगर के वो जो सीधे सादे अकेले ख्याल हैं, वो भी हम जान पाते हैं।
इससे एक अजीब सा तनाव पैदा होता है, क्योंकि पाठक जानता है कि लोग सिंगर के बारे में क्या सोच रहे हैं और असलियत क्या है।
और कहानी की बनावट भी एक पहिए की तरह, सिंगर केंद्र में है, बाकी सब उसके चारों तरफ घूम रहे हैं।
प्रतीक भी बहुत है। सिंगर की बधिरता और खामोशी संवाद में जो रुकावटें हैं उनका प्रतीक।
खुद सिंगर एक खाली कैनवस या झूठी मूर्ति का प्रतीक, मिक का संगीत आत्मा की आवाज का, बिफ का कैफे दुनिया का एक छोटा सा रूप, एक अस्थाई पनाहगा।
और वो माहौल, वो दक्षिणी गर्मी की घुटन, धूल भरी सड़कें, मिलों का शोर, अंधेरी रातें, ये सब मिलकर एक उदासी और बेचैनी का टोन सेट करते हैं।
हाँ, और हाथों का जिक्र बार बार आता है, गाने वाले हाथ, काम करने वाले हाथ, एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करते हुए हाथ।
ये किताब पढ़ने के बाद मन पर एक गहरी उदासी सी रह जाती है। ये कोई जीत की कहानी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खामोश हताशा की, अधूरी इच्छाओं की कहानी है। हम किरदारों के अकेलेपन के लिए गहरी हमदर्दी महसूस करते हैं। ये इंसानी हालत पर एक बहुत ताकतवर टिप्पणी है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, हम अपने रिश्तों में क्या करते हैं, दूसरों पर अपनी जरूरतें कितना थोपते हैं, क्या हम सच में सुनते हैं।
उपन्यास शायद यही कहता है कि अकेलापन वो जिंदगी का एक हिस्सा है, शायद अनिवार्य हिस्सा, लेकिन पूरी तरह निराशा भी नहीं है।
हाँ,
किरदारों की वो जो खामोश गरिमा है, उनका लगातार किसी मतलब की, किसी जुड़ाव की तलाश करते रहना, उसमें इंसानी जज्बे की एक झलक भी है। जैसे बिफ ब्रेनन आखिर में सोचता है, वो इंसानी संघर्ष और सहन शक्ति पर हैरान होता है।
ये हमें अपने आसपास के लोगों के अनकहे संघर्षों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। मिक का वो अंदर का कमरा याद दिलाता है कि हर इंसान के भीतर एक पूरी दुनिया हो सकती है जिसे शायद हम कभी देख ही ना पाए।
हाँ, और ये एहसास कि जब लोग किसी चीज के लिए बहुत बुरी तरह तरसते हैं तो वो तड़प उन्हें किसी भी ऐसी चीज पर भरोसा करने को मजबूर कर सकती है जो उसे देने का वादा करती दिखे, ये दिखाता है कि कैसे हमारी जरूरतें हमें वो देखने पर मजबूर कर सकती हैं जो शायद असल में हैं ही नहीं।
तो शायद कहानी का सार ये है कि जुड़ाव की जरूरत वो इंसानी फितरत का हिस्सा है, भले ही वो जुड़ाव अधूरा हो, गलतफहमी पर टिका हो, तलाश फिर भी जारी रहती है।
बिल्कुल, और यही बात इसे आज भी इतनी प्रासंगिक बनाती है। अनसुना महसूस करना, गलत समझा जाना, ये एहसास तो आज भी उतना ही सच्चा है।
हाँ, तकनीक ने हमें जोड़ तो दिया है, पर क्या उसने हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में मदद की है? ये सवाल मैक्यूलर्स ने इतने साल पहले उठाया था और ये आज भी उतना ही बड़ा है।
सही बात है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।